یہ 208 عیسوی صدی کی بات ہے۔ سالوں کی خونخوار جنگ کے بعد پورے اتری چین پر ایک جان لیوا سناٹا چھایا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے مہان یودھاؤں کا انت ہو چکا ہے پردھان منتری گاؤ گاؤ کے ہاتھوں۔ اب تو سمراٹ ہان نے بھی ان کی طاقت کے آگے سر جھکا دیا ہے، لیکن اب بھی دکشن کی اور سے انہیں چنوتی مل رہی ہے۔ دو یودھاؤں نے کاؤ کاؤ کی شیطانی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ایک ہیں تجربے کار لیو بی اور دوسرا ہے کم تجربے والا نوجوان سن چین۔ کاؤ کاؤ نے سمراٹ کے آگے ان دونوں کو باغی قرار کرنے کا پرستاؤ رکھا ہے اور شانت دکشنی شیتر پر جنگ چھیڑنے کا سجھاؤ بھی دیا ہے۔
سمراٹ کی جے ہو۔
کاؤ کاؤ ہان سامراج کی سینا کے پردھان منتری۔
کل میں نے لیو بی اور سن چین کے خلاف جنگ کا پرستاو رکھا تھا، کیا آپ اسے منظور کرتے ہیں؟
آپ حال ہی میں اتر سے جنگ لڑ کر لوٹے ہیں، ہماری پرجا اور سینا کو آرام کی ضرورت ہے۔
سن چین اور لیو بی خود کو دکشن کے سمراٹ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے سامراجیہ کو ہتھیانے کی فراق میں ہیں۔ اگر وقت رہتے کچھ نہیں کیا گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا سامراجیہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔
کاؤ کاؤ، اس بارے میں مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔
اب آپ اس بارے میں کتنا سوچتے رہیں گے؟ میرے سپاہیوں نے مہان ہین سامراجیہ کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی ہے۔ کیا آپ اپنا دیش نکالا بھی بھول گئے؟ شاہی پریوار نے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اگر میں نے بغاوت کرنے والوں کے سر نہ کچلے ہوتے تو کیا آج آپ خود کو سمراٹ کہلوا پاتے؟
کاؤ کاؤ، یہ ہمارا آدیش ہے کہ تمہاری نگرانی میں ہماری سینا باغی لیو بی اور سن چین سے لڑنے کے لیے کوچ کرے گی۔
شکریہ مہاراج۔
ہر دن 100 میل کا سفر طے کرتے ہوئے مہان شاہی سینا نے پورے دکشن شیتر میں آتنک پھیلا دیا اور لیو بی کی راجدھانی پر قبضہ کر لیا۔ داو یون لیو بی کی سینا کا بہادر جنرل۔ گنتی میں کم ہونے کے باوجود بھی لیو بی کی سینا شہر کے باہر کی کھلی جگہ میں کاؤ کاؤ کے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیو بی کے سب سے وفادار جنرل ٹکڑی کا نیتتو کر رہے ہیں، جن کا مقصد ہے بے گناہ کسانوں کو خون خرابے کا شکار ہونے سے بچانا۔ شرارتیوں کی سرکشا پر خود نظر رکھ رہے ہیں لیو بی۔
مہاراج، آپ کی پتنی اور آپ کا بچہ اب بھی گاؤں میں پھنسے ہیں۔
سینا کا لاجواب سلاحکار۔
جنرل، कांगविंग क्या खबर लाए हो?
जितना सोचा था काओकाओ की सेना उससे कुछ ज्यादा ही बड़ी है। उसके सिपाही किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। वो जरूर गोदाई वाली नीति से हमला करेंगे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया देना। याद रखना, उन्हें 2 घंटे तक यहीं पर उलझाए रखना ताकि सारे शरणार्थी बचकर निकल सके।
इस काम के लिए तो हमें और 1,000 सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी।
वो मुझ पे छोड़ दो।
चल।
महाराज की जय।
कांगमिंग, सारे किसान बहुत धीमे जा रहे हैं, उन्हें कम से कम और 4 घंटे लगेंगे।
इनके साथ जो सिपाही जा रहे हैं उनमें से जनरल जैंग को 1,000 सिपाही चाहिए ताकि वो काओकाओ को वहाँ रोके रख सके। ये किसान अकेले भी आगे जा सकते हैं। काओकाओ को हमारा आत्मसमर्पण चाहिए, इनका खून नहीं।
देखो, इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों को हमारी मदद की जरूरत है।
महाराज, ये किसान हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए।
ये लोग हैं साम्राज्य के वफादार हैं। ये काओ काओ के आतंक से बचने के लिए हमारे साथ आए हैं। अगर हम नागरिकों की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर ये जंग लड़ने का मतलब ही क्या है?
ठीक है, आगे बढ़ो।
हम आसानी से हार क्यों माने? नहीं,
उनकी की तादाद बहुत है। अगर शरणार्थियों की रक्षा ना की तो हम सब कुछ खो बैठेंगे।
ध्यान दो सब, शरणार्थियों की रक्षा करो, ये एक आदेश है।
कैन यू ऑल चलो,
वक्त बर्बाद मत करो, शरणार्थियों की रक्षा करो। सावयुन, महाराज के बेटे की रक्षा करो।
सारे शरणार्थियों की रक्षा करो।
उसके सारे सिपाही भाग गए हैं।
इतनी बार हारने के बावजूद भी ल्यू बी के कई वफादार अब भी हैं। एक दिन वो सब के सब मेरे होंगे।
महाराज, मैं आपके बेटे को बचा कर ले आया, लेकिन रानी साहिबा को नहीं बचा पाया। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे।
जाओ यू, खड़े हो जाओ। मैंने अब तक हार नहीं मानी है। गांव गांव को लगता है कि वो इस साम्राज्य पर कब्जा कर सकता है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं उसके ज्यादतियों के खिलाफ हमेशा लड़ता रहूंगा।
महाराज, मुझे सुनचैन से जाकर मदद मांगने की इजाजत दीजिए।
सुनचैन से? क्या उसमें वाकई इतनी हिम्मत होगी काव काव जैसे ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े रहने की?
सुनचैन एक नौजवान योद्धा है जिसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। सुन परिवार ने सालों से दक्षिण पर राज किया है, वो अमीर है और उनकी सेना ताकतवर है। वो काव काव से मुकाबला कर सकते हैं। उसे हमारी उतनी जरूरत है जितनी हमें उसकी। अगर हम उसका साथ हासिल करने में कामयाब रहे तो हम मिलकर काव काव को उत्तर की ओर ढकेल पाएंगे। फिर हम पश्चिम की ओर जाकर अपनी सेना को फिर से खड़ा करेंगे। अगर हम पश्चिम में बस जाएंगे और काव काव उत्तर में और सुनचैन दक्षिण में होंगे, तब मुकाबला बराबरी का होगा। हम काव काव को अकेले नहीं रोक सकते।
भाई साहब, ल्यू बी दक्षिण की ओर भाग निकला है। अगर उसने जाकर सुनचैन से हाथ मिला लिया
तो हम चाहते हैं ना? अगर सुनचैन ल्यू बी से हाथ मिला लेता है तो वो एक गद्दार को पनाह देकर बगावत करेगा और ये उससे जंग करने की सही वजह होगी। ल्यू बी में शाही खून है, पर उसका जन्म एक गरीब मोची के घर हुआ था। वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया। सुनचैन एक ऐसा नौजवान है जिसने कभी कुछ हासिल नहीं किया। एक नाकामयाब शख्स एक कायर से हाथ मिला भी ले तो उसे क्या हासिल होगा?
दक्षिणी क्षेत्र का राजमहल। सुनचैन दक्षिणी राज्य के शहंशाह।
सलाम कबूल करे शहंशाह।
कोंगमिंग, मैंने सुना है कि काव काव ने ल्यू बी की हुकूमत मिट्टी में मिला दी।
वो हार मेरे सरताज की रहम दिली का नतीजा थी। उन्होंने शरणार्थियों को बेसहारा छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए हमें शिकस्त का चेहरा देखना पड़ा।
काव काव की फौज कितनी बड़ी है?
फौज में तो अनगिनत लोग हैं, दरियाई फौज में भी 8 लाख सिपाही हैं। काउकाव का निशाना महाराज ल्यू बी नहीं है बल्कि दक्षिणी राज्य है। काउकाव ने ऐलान कर दिया है कि वह खुद वजीर आजम है और वह शहंशाह को नचा रहा है कठपुतली की तरह। अगर उसने दक्षिणी राज्य पर कब्जा कर लिया तो हुकूमत उसके हाथ लग जाएगी।
मेरे सरताज, आप उसके साथ जंग मत छेड़ना। हमारे लिए अमन से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है।
आप लोग चाहें तो अपने आप को उसके हवाले कर सकते हैं, शायद अब वो आप लोगों की जान बख्श दे। और अगर काउकाव को रहम आ गया तो हो सकता है वो आप ही को राजा भी बने रहने दे, तो लड़ाई करके फायदा क्या?
क्या तुम ये कह रहे हो कि लूबी मुझसे ज्यादा काबिल है?
नहीं, हमें आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है शहंशाह। आप में और महाराज लूबी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी हम आपकी सल्तनत का मुकाबला नहीं कर सकते। जिसका मतलब साफ है, महाराज लूबी से ज्यादा ताकतवर आप हैं।
मेरे सरताज, कांग मिंग के पास काओ काओ को हराने की एक तरकीब है, हम एक बार इसकी बात तो सुनी सकते हैं ना?
हम हारे जरूर पर कमजोर नहीं है। हमारे पास जनरल कैन यू, ज़ेनज़े और ज़ाओयुन है, और साथ ही 10,000 सिपाहियों की नौसेना भी। दक्षिणी राज्य की बेजोड़ सेना के साथ मिलने से दोनों ही पक्ष मजबूत हो जाएंगे। भले ही काव काव की फौज बड़ी है, पर उसमें ज्यादातर वो सिपाही हैं जो बंदी हैं और उसके वफादार नहीं। ना ही उन्हें दक्षिणी मौसम की आदत है और ना ही नौसेना का कोई भी तजुर्बा। वो हमारे अचानक हमले का जवाब नहीं दे पाएंगे और हार जाएंगे।
हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।
तुम्हारी बात में दम तो है
सरताज, आप कांगमिंग की बातों में मत आइए। वैसे भी हमारे पास काकाओं से बगावत करने की कोई वजह नहीं है।
हाँ, ये सही कह रहे हैं। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।
शहंशाह, मैं जानता हूँ कि आप में बहुत काबिलियत है। हर दरबार को एक दिन अपनी ताकत दिखानी पड़ती है और वो दिन आ गया है।
सरताज सुनिए, ऐसा मत कीजिए सरताज, कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सोच समझ के फैसला लीजिए।
खामोश हो जाओ। ऐसी बातें मैं कई बार सुन चुका हूँ। मुझे जरा इस पर सोचने दो, मैं सोचकर ही जवाब दूंगा।
हवा के परों पर मैंने भरी है ऐसी उड़ान, पूरी दुनिया अब होगी मेरे दिन के समान।
दक्षिणी राज्य धरती पर एक स्वर्ग जैसा है, पर अफसोस के काव काव इसे राख में बदल देगा।
आपने शहंशाह को तकरीबन मना ही लिया है।
हाँ, वो तो मान जाएंगे, पर एक और शख्स है जिसे मनाना बाकी है।
वाइस रॉय सोयू?
बिल्कुल सही।
वो तो शहंशाह सुन चैन के लिए एक बड़े भाई जैसे हैं। सुन चैन के स्वर्गवासी पिता ने एक बार कहा था, दक्षिणी राज्य के दरबारी मामलों को
हमेशा सोयू की सलाह की जरूरत होगी।
वो अभी लाल पहाड़ी पर तैनात हैं, उनकी हामी भी बहुत जरूरी है।
राज्य का शेर दिल जनरल।
ध्वजा।
एक टुकड़ी यहां। ये बन गए दो टुकड़ियां।
हमला करने के लिए बेहतरीन नीति, पर अफसोस बहुत पुरानी है।
इस तरफ।
लाओ मुझे दो।
ज़ोयू, दक्षिणी राज्य के वायसराय।
हुजूर।
सुना कोई तन।
शुक्रिया सरकार। ये कॉन्गमिंग है।
कैसे हैं?
ठीक हूं। इतनी ठंड में पंखा क्यों?
इससे मुझे शांत रहने में मदद मिलती है। अब क्या करूं, मुझे आदत सी है।
वैसे आप देखने में शांत ही लगते हैं।
इस तरफ।
आप हंस रहे हैं?
मैं हंस नहीं रहा, सराहना कर रहा हूं। मेरा ख्याल है ये सिपाही लड़ने के साथ साथ संगीत का भी शौक रखते हैं।
आप युद्ध की कला समझते हैं?
जी थोड़ी बहुत।
आपने मेरी नीति को पुराना कहा।
लगता है यहां पर बातें आप तक उड़कर पहुंच जाती हैं।
मेरे कान कुछ ज्यादा ही तेज हैं। जनरल गैन, कॉन्गमिंग कहते हैं कि आपकी ये नीति पुरानी हो चुकी है।
एक नीति की ताकत उसे सही तरह अपनाने से होती है, पुरानी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनकी तारीफ?
ये है जनरल गैनजिंग।
क्या एक भाला पकड़ना नहीं आता? जरा ताकत लगाओ, फिर से करो।
जनरल गैन और इनके आदमी कभी खूंखार समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, ये बहुत बहादुर हैं।
शुक्रिया,
माफी चाहता हूँ जनरल गैन।
सरकार, अब ज्यादा वक्त नहीं है, हम लड़ें या नहीं।
लुसु, बहुत हुई राजनीति की बात है।
जी अच्छा,
आप संगीत के जानकार लगते हैं, क्यों ना एक जुगलबंदी हो जाए।
ज्यादा तो नहीं, थोड़ा जानता हूँ।
मुझे लगता है आप बहुत कुछ जानते हैं, बस मानना नहीं चाहते।
अगर आप दोनों एक ही लैब पर चल पाए तो फिर ये मिलाप बहुत सही होगा।
जियाकुई है। जवानी के दिनों में इसी के पिता ने मेरी काबिलियत पहचानी थी। मैंने इसे एक ही बार देखा है। अब तो ये बहुत ही खूबसूरत हो गई होगी और अब जो यू की बीवी है। एक बार दक्षिणी राज्य मेरे हाथ लग जाए तो ये भी मेरी हो जाएगी।
हम काम की बात किए बिना कैसे जा सकते हैं?
उनका जवाब उनके संगीत नहीं दे दिया, मुझे यकीन है वो जरूर लड़ेंगे।
मेरे भाई ने ये जंग सिर्फ एक औरत के लिए छेड़ी है।
लगता है कि ये युद्ध का होना अब तय ही है।
हम काव-काव के हमले को रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये युद्ध शायद आने वाली पीढ़ियों की हिफाजत करेगा।
बस इस युद्ध के बाद और कोई युद्ध न हो।
तुम ये पिनान शब्द बार बार क्यों लिख रही हो?
पिनान का मतलब है करीब आओ, हमारे घर एक नई खुशी आने वाली है। उसका एहसास हो रहा है? सब कह रहे हैं बच्चों और औरतों को दूर भेज दिया जाएगा, तो क्या मुझे भी जाना होगा?
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा।
काकाओ ने ऐलान कर दिया है कि वह खुद वजीर आजम है। अगर उसने दक्षिणी राज्य पर कब्जा कर लिया तो हुकूमत उसके हाथ लग जाएगी।
काओ से जंग होकर रहेगी, जो भी पीछे हटने की बात करेगा उसका अंजाम ठीक इस मेज की तरह होगा। जोयू, चेंगपू, लूसु,
जी
जी
जी,
बैठ जाओ। जोयू को वाइसरॉय बनाया जाता है, चेंगपू होंगे सिपाही सलार, लूसु होंगे सेनापति। हम यूबी के साथ हाथ मिलाकर काओ काओ को खत्म कर देंगे।
जी हुजूर।
आप यहाँ कैसे?
युद्ध के लिए।
युद्ध के लिए? युद्ध कोई मजाक की बात नहीं है।
क्या आपको यह मजाक लग रहा है? औरतों का भी फर्ज है अपनी रियासत की मदद करने का।
ये तो मेरा घोड़ा भी कहता है।
इनकी तारीफ?
ये शहंशाह सुन चैन की बहन है, राजकुमारी शांगजिया।
राजकुमारी, क्या कभी युद्ध में गई है?
गई तो नहीं, पर जाना जरूर चाहूंगी।
अपने पहले युद्ध के बाद ही मैंने दुआ की थी कि मुझे दूसरा युद्ध न लड़ना पड़े।
बेहतर होगा कल के युद्ध में मुझे भी शामिल किया जाए। सुनिए, रुकिए जरा, रुकिए।
एक बार और जल्दी करो।
या।
सभी ये प्यारी कहानी
सुनो सभी ये प्यारी कहानी।
एक सुंदर कन्या बनेगी राजा की रानी।
एक सुंदर कन्या बनेगी राजा की रानी।
अगर खाना ही ना हो तो एक किताब का क्या फायदा है?
एक दिन तुम समझ जाओगे कि आज अगर पढ़ाई करोगे तो कल खाना जुटा पाओगे।
कैसे हो जाओ?
मैं ठीक हूँ, आप आ गए?
यह दक्षिणी राज्य से जाओ।
सलाम कबूल कीजिए यूबी।
बहुत बहुत शुक्रिया। सुनचैन की सेना हमारे बहुत काम आएगी। मैं आप सभी का एहसान मंद हूँ। हम आपके दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे पर एहसान नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सेना में कितने सिपाही हैं?
30,000।
30,000 शायद काफी नहीं होंगे।
मतलब हमारी सेना छोटी है? आपकी सेना तो एक ही युद्ध में हार गई।
आपने कितने युद्ध जीते हैं बता दीजिए ताकि हम भी हंस लें।
तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम तो आज तक हर युद्ध में हारते आए हो।
हायर बंदे से तो हार नहीं अच्छा होता है। मुझे चुनौती दे रहे हो? हिम्मत तो रखो के मुकाबला करो।
हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि लड़ते रहना चाहिए। जोयो आपको क्या लगता है?
काफी मजबूत है ये। कमजोर घास की पत्तियां भी एक साथ बुने जाने पर ताकतवर बन जाती हैं। आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक और बहादुर जनरल है। हम दक्षिणी राज्य की संतानों को अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी। हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा एक सपना है, एक होके रहे हम। हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
सरकार, दक्षिणी राज्य से एक दूत आया है।
क्या सुनचान को मेरा भेजा हुआ खत मिला?
जी मिल गया।
उसने क्या जवाब दिया?
ये तो कोरा है, इसका क्या मतलब हुआ?
उसका लड़ने का इरादा है, इसलिए उसने शब्दों पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। इसका सर कलम कर दो। दक्षिणी राज्य के पहले शहीद के नाम कोई बात नहीं, उसने हमारे दूत को मार दिया ताकि हमारा जज्बा कम हो जाए। मैं उससे नहीं डरता, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे।
तो जोयू को समुद्री लड़ाई पसंद है।
सेनापति काइमाओ और जैंग यून भी लड़ने को बेकरार है। ठीक है, हमारी सेना को नदी के रास्ते ले जाओ। सेनापति काइमाओ की नौसेना बहुत ताकतवर है। अब और पानी का बहाव भी उनके पक्ष में है। हमला पानी के रास्ते हो सकता है।
सरकार, हम लोग कब कूच करेंगे?
कल भोर से पहले।
वो बेसब्र है, वो आज ही रात हमला करेंगे।
नहीं, आज रात ही निकलो।
क्या वो वाकई इतनी जल्दबाजी करेगा?
उसकी चालों के लिए एक ही शब्द लागू होता है, तेज।
पिछली बार उसकी सेना ने 3 दिन में 150 मील का सफर तय किया था और हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला।
वह आत्मसमर्पित सिपाहियों को आगे रखता है और अपने भरोसेमंद लोगों को पीछे।
मेरा भाई और तुम सेना को पीछे की तरफ से संभालोगे, बाकी के अफसर सेना को पश्चिम से ले जाएंगे ताकि नौसेना को सहारा दिया जा सके।
उनका असली निशाना क्या है?
ये जगह।
अब समझा आप लाल पहाड़ी पर क्यों रहते हैं। आप काफी दूरंदेशी हैं।
फिर भी लोग मेरी नीति को पुराना कहते हैं।
मेरे पास उससे भी पुरानी एक नीति है।
कछुए वाली नीति, ये तो वाकई पुरानी है।
और अगर सही वक्त पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो काफी असरदार भी होती है।
अगर वो सोचते हैं कि मैं नौसेना का इस्तेमाल करूंगा तो जो यू और कॉन्ग मिंग दोनों ही बेवकूफ हैं। सेनापति काइमाओ, आपकी नौसेना सिर्फ ध्यान हटाने के लिए होगी
जी।
और तुम दोनों 2000 सिपाहियों के साथ यहाँ जाओगे और उन पर अचानक हमला कर दोगे।
काओ काओ के सिपाही जमीन पर लड़ने के आदी हैं। क्या वो पानी के रास्ते हमला करेगा?
आपको क्या लगता है?
काओ काओ कभी अपने इरादे जाहिर नहीं करता, अपने आदमियों के सामने भी नहीं।
दक्षिणी सेना का कोई नामो निशान नहीं है और न ही कोई निवासी मौजूद है।
सब भाग गए सिर्फ एक कछुए के सिवा।
पीछा करो, ये उनकी चालू ही तो।
तुम्हें लगता है मैं कुछ लड़कियों से डर जाऊंगा?
चलो
फंस चुका है। कछुए की नीति अब भी काम करती है।
तैयार हो जाओ।
मैंने कहा था ना ये इनकी चाल होगी।
यहां से निकल जाओ।
नौसेना लाल पहाड़ की तरफ बढ़ रही है। सरकार
हम हार गए भाई साहब।
ये कैसे हो गया? ये नामुमकिन है।
ये तो सिर्फ एक मामूली सी रुकावट है, डरने की जरूरत नहीं है। लगता है उन्होंने अब तक मुझे समझा नहीं है। देखो, हम खुलेआम पानी के रास्ते उनके इलाके में घुसे, फिर भी कोई जहाज हमें रोकने नहीं आया। उसके बदले उन्होंने हमारी छोटी सी सेना पर हमला किया। वो हमारे लिए तैयार थे, अब हमें उन सबको बिल्कुल कम नहीं समझना चाहिए।
भाई साहब, उनकी नौसेना बहुत कमजोर है, हमें फौरन उन पर हमला बोल देना चाहिए।
इस वक्त हमारे सिपाहियों को आराम और लड़ाई की तैयारी करने की जरूरत है। हम जल्द ही इस नदी को पार कर लेंगे। मैं अब भी उस पहाड़ी पर अपनी कविता लिखने को बेकरार हूं। सुनो, वहां डेरा डाल दो, लाल पहाड़ी के सामने वाले किनारे पर।
बहुत मजबूत है, अगर ये चट्टान से भी टकरा जाए तो इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता।
हम उन्हें कैसे हरा पाएंगे? काउकाउ ने कहा था कि उसके पास 800,000 सिपाही है, शायद वो सच बोल रहा था।
अगर उनकी फौज बड़ी है तो क्या? हमने उन्हें अपनी नीति से पीछे ढकेला तो था ना?
बिल्कुल, उससे उनकी रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है।
आपको क्या लगता है?
सीधे अपनी नौसेना से हम पर हमला करने के बजाय काउकाउ ने अपनी सेना से हम पर छिपकर वार करने की कोशिश की। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जाहिर है वो अपनी रणनीति बदलेगा और नौसेना का इस्तेमाल करेगा।
उसने अपनी सेना को हमारी ताकत पर रखने के लिए भेजा था, पर हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। उनके हमले का इंतजार करना होगा।
मुझे बाकी घायलों की भी मदद करनी चाहिए। देखो ये पट्टी कितनी अच्छी तरह बंधी है।
तुम एक अच्छी वैद्य बन सकती हो।
शायद काउकाउ उतना बेरहम नहीं है।
वो बहुत बेरहम है, फौज का एक बेहतरीन अफसर, जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है वो,
चाहे वो जो भी हो, पर उसका कोई दोस्त नहीं है और इसीलिए वो तुमसे बहुत छोटा है।
इस तरफ घूमो।
उनके जहाज काफी तैयार मालूम होते हैं।
हर नीति की कमजोरी होती है, बस पता लगाने की देर है।
ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा।
सही कहा।
मंत्री जी के इस खेल को शुरू करने के आदेश ने इन बच्चों को ताकतवर बना दिया है।
चलो पीछे आओ।
अंदर ले जाओ, जाओ।
सेना छोटी है, वो पहाड़ों में छिपकर ही वार करेगा।
उस मामूली सी जीत ने हो सकता है जोयू में घमंड भर दिया हो। वो छिपकर वार करने वालों में से नहीं, वो हमला करेगा तो सीधे सामने से।
तूफान से भी आगे।
सभी जान लें कि नौसेना की जीत का दारोमदार होगा सेनापति काई माओ और जैंग यून के कंधों पर।
हम आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ेंगे।
आग से भी जोशीला। मजबूत जैसे चट्टान।
ये तो कमाल हो
गया। तुम्हें युद्ध पसंद नहीं तब भी युद्ध को समझती कैसे हो?
ये सब समझने के लिए मुझे तुम्हारी किताबों को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है।
हजार किताबें भी इस एक प्याली चाय के आगे कुछ नहीं।
तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तुम्हारी तलवार ऐसे चली जैसे तुम काव काव को हराने का तरीका जान चुके हो। काश कि हम काव काव को चाय के लिए बुला सकते, युद्ध भुलाकर बस इस नजारे का मजा ले पाते, कितना अच्छा होता ना।
उस इंसान को इन बातों की कोई समझ नहीं।
नई जगह ने हमारे सिपाहियों को बीमार कर दिया है। लंबे युद्ध ने उन्हें कमजोर बना दिया है, जिससे वो आसानी से बीमारियों की चपेट में आ गए। इसलिए ये सब हैजे के शिकार।
इसका इलाज है?
हाँ है तो सही, पर इसमें देर लगेगी।
कितने मर गए?
100 से भी ज्यादा। कुछ ही दिनों में मामला हाथ से निकल जाएगा।
हमें इन्हें फौरन दफना देना चाहिए।
दफनाना नहीं, इन्हें जलाना होगा। सिर्फ जलाने से ही बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। जाओ चिताएं तैयार करो।
जी।
रुक जाओ,
चलाओ चलाओ, जल्दी करो, आगे बढ़ो,
चलो चलो जल्दी करो।
नाव को आगे खींचो,
चलो खींचो, जल्दी करो जल्दी करो। नाव पर रखा क्या है? सब किस्म मर चुके हैं, ये तो दुश्मन के सिपाही हैं।
जनरल को इसकी खबर दो।
जी।
हथियारों और कवचों को यहां रख दो, लाशों को वहां लेटा दो।
इन्हें छुओ मत, ये हैजे से मरे हैं। हट जाओ, ये छूने से फैलता है। हट जाओ, किसी चीज को मत छूना। जाओ निकलो यहाँ से, छूना मत।
हम लोगों को जाना होगा, इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। इस जगह पर रोग फैला हुआ है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। काव काव वाकई बहुत ही बेरहम है।
जिन सिपाहियों ने गलती से लाशों को छू लिया था, मैंने उन्हें अलग बिठा दिया है ताकि औरों को बीमारी न लग जाए।
और बाकी गांव वाले?
अफसोस, कईयों को बीमारी लग चुकी है।
काव काव ने बहुत ही गिरी हुई हरकत की है।
वो गंदा खेल खेल रहा है।
इन लाशों को किस तरह ठिकाने लगाए?
ये हमारे दुश्मनों की लाशें हैं, इन्हें मछलियों को खिला दो। और क्या?
नहीं, इन्हें इनका हक देंगे।
दफना नहीं सकते, इन्हें जलाना होगा।
अपना जाम उठाकर मैंने ये गाना गुनगुनाया, किसे पता जिंदगी में किसने क्या खोया क्या पाया। ओ उसकी बूंद है इंसान का जीवन, बीत गई जिंदगी चला गया यौवन, लेकिन फिर भी मानी न मेरे दिल ने हार, चाहे क्यों न बचे हो जीने के दिन चार। मेरे इस गम को अब कौन समझेगा, अब बस महफिल में सिर्फ ये जाम छलकेगा। जी हाँ, होगी जीत हमारी।
आराम से पियो, संभल कर, गर्म है।
उस तरफ
बीमार बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां हैं ना हमारे पास।
एक अहम चीज है कैसिया पेड़, वो पेड़ बहुत कम है पर तलाश जारी है।
क्या उससे हैजा ठीक हो जाएगा कॉमिंग?
उससे रोग के लक्षण कम हो जाएंगे, पर असली इलाज के लिए दूसरी चीजें चाहिए।
मैं देखता हूं, यहां दर्द हो रहा है।
जल्दी करो, हमारे लोगों को बाहर निकालो, जल्दी करो।
चलो चलो जल्दी 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 करो जल्दी।
वहीं रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो?
जनरल, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मरीज सफर नहीं कर सकते। जल्दी करो, सबको घोड़ों पर बिठाओ।
सुनिए सुनिए,
चलो, ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते। मेरी बात सुनिए,
मेरी बात सुनिए।
आप जा रहे हैं? तो क्या करूं, ये महामारी तो फैलती जा रही है। मेरे पास बस 20,000 लोग बचे हैं। अगर ये सब जारी रहा तो शायद मेरा सब कुछ खो जाएगा। मुझे वापस लौटकर अपनी सेना को फिर से एक बार तैयार करना होगा।
आप ऐसे वक्त में पीछे हट रहे हैं? आप ही ने हमारा साथ मांगा था, अब हमारी जान दांव पर लगाकर आप भाग रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा धोखा है।
हम अपनी जबान के पक्के हैं, लेकिन देखिए हमारे सिपाहियों का क्या हाल हुआ है।
तो क्या हमारे सिपाहियों का हाल वैसा ही नहीं है?
खुदगर्ज,
खुदगर्ज किसे कहा?
रुक जाओ, साइन जीरो को।
महाराज, आप जानते हैं ये शुरू हो गया, आप कैसे?
कॉन्गमिंग, एक दशक तक हारने के बाद अब मैं और कुछ नहीं खोज सकता। सिपाहियों को भी जिंदा रहने के लिए कुछ नियम तो पालने ही पड़ते हैं।
हमें अपने दोस्तों का यकीन नहीं तोड़ना चाहिए।
मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, पर कभी कभी सिर्फ इंसाफ के भरोसे नहीं जी सकते। वक्त आ गया है कि मैं दूसरों को मुश्किल युद्ध लड़ने दूं। देखना, मेरी ये बात एक दिन तुम जरूर समझोगे।
सुनिए, आपके सिपाहियों के साथ लड़ना मेरे लिए फख्र की बात थी। हमारा एक ही मकसद था, लेकिन अब थोड़ी मुश्किल होगी। फिर मिलेंगे
जरूर।
हम फिर जरूर मिलेंगे।
तुम नहीं जाओगे?
मैं वादे पूरे करता हूँ, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता।
दीवाना कहा जाता है ऐसी बातें करने वालों को।
तो फिर मैं दीवाना हूँ।
हुजूर चाय तैयार है।
भैया, जासूसों का कहना है कि हैजे वाली चाल कामयाब रही, दक्षिणी राज्य में हड़बड़ी मची है। एक बात और, लोभी अपने सारे सिपाही लेकर लौट गया है।
अच्छा है,
अब वो कमजोर हो गए हैं।
बहुत अच्छे।
आपका स्वागत है सरकार।
आइए हुजूर।
सिपाहियों का प्रशिक्षण तो ठीक तरह से चल रहा है ना?
बहुत बढ़िया चल रहा है सरकार। हमने लोहे की सलाखों से सारे जहाजों को जोड़ दिया है। हमारे सिपाही उत्तर से हैं और ऐसे समुद्र युद्ध के आदि नहीं हैं। अब हमारे जहाज पूरी तरह स्थिर रहेंगे। कोई तूफान अब हमारे सिपाहियों को बीमार नहीं कर पाएगा।
इन्हें अलग कर सकते हैं?
जी बिल्कुल।
सिपाहियों, जहाज अलग करो।
जहाज अलग हो जाएंगे, सारे जहाज एक सरहद की तरह आगे रहेंगे, युद्ध के लिए तैयार।
एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आप लोग वाकई समुद्री युद्ध में माहिर हो।
शुक्रिया हुजूर।
सरकार, काउकाउ के पास तो लाखों की तादाद में सिपाही है, हमारे पास सिर्फ 30,000 हैं। हम उनसे बहुत छोटे हैं।
इस तरह से कैसे लड़ पाएंगे हम?
ये जंग ही हमारी किस्मत तय करेगी। हम लड़ेंगे चाहे जीते या हारे।
हमारे पास कितने तीर होंगे?
सरकार, 50,000 से भी कम। 40,000 तीर जाते वक्त ल्यूबी अपने साथ ले गए।
जीतने का एक ही रास्ता है, उनकी चीजों को तबाह करो।
बहुत अच्छे, तो हमें करना क्या चाहिए?
उनके हथियार चुरा लेंगे जिससे वो कमजोर हो जाएंगे। कम से कम 1,00,000 तीर चुराकर उनकी ताकत को तोड़ना होगा।
ठीक है, तो उन तीरों को चुराने की जिम्मेदारी मेरी हुई। रात में कोहरा छाता है, दिन में घुंघराले बादल। मैंने सही सोचा था, धुंध आ रही है।
ये दक्षिणी मौसम भी बड़ा ही अजीब है। ये ठंड के मौसम में आखिर बादल क्यों गरज रहे हैं? तुमने सुना?
जहाज को आगे भेजो जल्दी।
दिखते ही हमला करो।
तैयार सारे जहाज एक कतार में। तीर चलाओ।
हमला करो।
चलो सारे जहाजों को घुमा लो।
क्या
अब एक साथ नगाड़े बजाओ, उन्हें एक सही निशाना दो।
उस आवाज पर निशाना साधो।
चलो हो गए हैं।
डरपोक चूहों की तरह भाग गए।
लॉर्ड शुक्रिया प्रधानमंत्री जी इस तोहफे के लिए।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
क्या बात है क्या बात है। देखिए देखिए एक बात बताइए मुझे, आपको कैसे पता था कि धुंध आने वाली है?
कोहरा छा जाना और फिर घुंघराले बादल आना अंदेशा देता है कि धुंध आने वाली है। अगर आप पृथ्वी आकाश और कुदरत के बदलावों को समझ जाएं तो सूरज चांद और सितारे हवा जंगल पहाड़ और आग सब के सब आप ही के मुताबिक चलते हैं।
तो आप कुदरत का मन पढ़ सकते हैं।
अरे एक नाव पीछे रह गई।
वापस आओ।
कैसे हो गया?
वापस आओ।
तिरानवे हजार आठ सौ, चौरानवे हजार, चौरानवे हजार दो सौ, चौरानवे हजार छह सौ। चलो चलो जल्दी करो, काव काव को इसी से हराना है।
सब सुन लो, दो दिन बाद हम लाल पहाड़ी पर कब्जा कर लेंगे।
जी हुजूर।
सब सुन।
आप सब कैसे हैं? देर से आने की माफी चाहती हूँ।
शुक्र है आप बच गई।
आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
नहीं, मैं यहाँ आते वक्त जरा कीचड़ में गिर गई थी।
तुम हमेशा मुसीबत खड़ी करती हो, तुम आखिर चली कहाँ गई थी? जवाब दो।
वो हमले के लिए तैयार है। शेंग जिया, शुक्र है तुम आ गए। जिया कोई? ये क्या? जरा से इसे खींचोगी? चलो ना। ये काउकाउ के डेरे का नक्शा है।
बात तो सही।
अगर हम जोयू के दिमाग से सोचे तो बताओ वो कैसे हमला करेगा?
उसके पास सिर्फ एक ही हमले जितने सिपाही हैं। वो सीधे हमारे जहाजों पर हमला करेगा।
मुझे लगता है वो आग से हमला करने की सोचेंगे।
आग से? मुझे तो नहीं लगता।
सिपाहियों के बिना उन्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी, और वो ताकत उन्हें कहां से मिलेगी? यकीनन आग से। यह तो युद्ध का पुराना नियम है।
अफसोस उनकी ये चाल नहीं चलेगी। हवा उत्तर पश्चिम में चल रही है। अगर उन्होंने हमारे जहाजों पर आग से हमला किया तो हवा उनका रास्ता रोकेगी और वो खुद को ही जला बैठेंगे। आग का इस्तेमाल तो हमें जरूर करना चाहिए। हाँ, सभी जहाजों को कोयले से पूरी तरह लाद दो। कल लाल पहाड़ी को हमेशा के लिए हम मिट्टी में मिला देंगे।
काउकाउ की फौज पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हो सकता है आज रात ही जंग छिड़ जाए। हमें आखिरी सांस तक लड़ते रहना होगा, जीते या हारे। हमें इस जंग में अपनी जान लगा देनी होगी।
ये बताइए, इन जहाजों के बीच ये लकीरें कैसी हैं?
सुनकर हंसी आएगी। उन्होंने अपने जहाज एक साथ जोड़ दिए हैं ताकि उनके सिपाहियों को अकेलापन महसूस ना हो।
बातें बहुत हुई, अब करना क्या है ये बताइए।
काउकाउ ने बहुत गलत जगह डेरा डाला है। ये कांटे के आकार का है जिससे उनकी वापसी मुश्किल होगी। अगर उनका हमला नाकामयाब रहा तो वो पीछे नहीं हट पाएंगे। हम आग का इस्तेमाल करेंगे। सारा इलाका हमारे काबू में है। अगर हमने उनका वो जहाज जला दिया जिसमें सब सामान और बारूद है तो वो फंस जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे।
हाँ, आग से हमला। बस मुझे 10 आग वाले जहाज दे दीजिए। 2 जहाज बाई और दाई तरफ से हमला करेंगे, बाकी के 8 उनके बीच वाले जहाजों को तबाह कर देंगे। हम यहां से रास्ता बना देंगे, फिर आप सब हमारे पीछे अंदर चले आना। उनकी तादाद चाहे जितनी भी हो, हमने कुछ
काश की ल्यूबी की सेना हमारे साथ होती तो वो उनके ठिकाने पर पीछे से हमला कर पाती, फिर तो हमारी जीत पक्की ही होती।
हवा तो काउकाउ का साथ दे रही है।
उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है, ऐसे में आग लगाकर हमारे ही जहाज चल जाएंगे।
काउकाउ हवा का रुख समझता है, वो भी आग का इस्तेमाल करेगा।
खामोश क्यों हैं? क्या देख रहे हैं?
देखो, वो पूरब में काला घेरा सूरज पर छाने लगा है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है?
कमिंग, क्या कहना चाहते हो?
हवाओं का रुख बदलने वाला है हुजूर। जब गर्मी में सर्द हवाएं चलती हैं और सूरज पर काला घेरा छा जाता है, तब यांगजी नदी पर हमेशा एक बेमौसमी हवा चलने लगती है।
बेमौसमी का मतलब?
एक गर्म दक्षिणी पूरब हवा, वो दक्षिणी पूरब से उत्तरी पश्चिम में बहती है।
कांगमिंग, तुम बता सकते हो हवा रुख कब बदलेगी?
आज रात या फिर कल सुबह।
इतिहास गवाह है कि सही मौसम का अंदाजा लगाने वाला ही जीत का हकदार होता है।
हमें काउ काउ का हमला आगे ढकेलना होगा, तभी हमारी जीतने की उम्मीद है।
ये धमाका ठीक है, हाँ ये ठीक है।
देखो ये पश्चिमी हवा कितनी तेज है, ये कभी नहीं बदलने वाली। हम उनकी नौसेना को नहीं हरा पाएंगे।
ऐसे हार मत मानो, पूरब की हवा जरूर आएगी।
सरकार, सरकार, आपकी 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 बीवी कहीं चली गई है।
मेरी जान, जब तक तुम ये खत पढ़ोगे मैं काव काव के डेरे तक पहुंच चुकी होंगी। मैं पूरी सावधानी बरतूंगी और सही वक्त आने पर ही कदम उठाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरब की हवा जल्द ही चलने लगे। जहाँ भरोसा होता है वहीं उम्मीद होती है। यांगजी नदी का साफ पानी, पहाड़ों के पेड़ों पर झूलते लाल पत्ते, अपने घोंसलों में लौटते हुए पंछी, शाम का गाना गाता हुआ मछुआरा, ये हमारा घर है, हमारी सुंदर मातृभूमि। हमारे लोग इसके लिए खुशी खुशी अपनी जान दे रहे हैं। मैं यूं ही खड़े ये होते नहीं देख सकती। तीन महीने से हमारा बच्चा पिनैन मेरी कोख में पल रहा है। मैं डरती थी कि कहीं तुम्हारा मकसद से ध्यान न भटक जाए, इसीलिए मैं चली गई। अपने बच्चे की फिक्र करने में हमें दक्षिणी राज्य के बाकी बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं पिनैन को वापस घर जरूर लाऊंगी।
सोयू की पत्नी आई है और वो अकेली है।
हमें अपने हमले की तरकीब बदलनी होगी। मैं अपने सबसे जांबाज योद्धाओं को उन्हें बचाने के लिए यहां से रवाना होने का हुक्म दे रहा हूं।
कुछ नहीं बदलेगा। हमारे सारे सिपाहियों को हमले पर ही ध्यान देना होगा। हम अपनी ताकत को नहीं बांटेंगे।
सरकार, युद्ध भूमि में हम बिल्कुल अकेले हैं। अपने साथियों के बिना हमारे जीतने के आसार बहुत ही कम हैं।
मैंने कभी अपने सपने से मुंह नहीं मोड़ा।
सपनों के भरोसे जीत नहीं मिलती।
पूरब से हवा कब चलेगी?
मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 बजे। अगर उस वक्त तक आपको अपने दोस्तों पर भरोसा बना रहे तो एक दिया जला दीजिएगा।
अगर जिया क्वी के साथ कोई हादसा हो गया तो क्या जंग तब भी जारी रहेगी?
मैंने आपको एक बार आपके परिवार के साथ बगीचे में देखा था। उस उम्र में भी आप बेहद खूबसूरत दिखती थीं। आप चाय बनाने की विधि सीख रही थीं।
क्या आपने ये युद्ध मेरे लिए छेड़ा है?
क्या आपको ऐसा लगता है?
मेरे पिताजी आपको बहुत पसंद किया करते थे। उस वक्त काव काव इंसाफ, सिद्धांतों और वफादारी में माना करते थे। वो एक नौजवान नायक थे।
तभी तो वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाया ना।
अनगिनत मासूम लोगों की जान लेकर।
मैंने सुना दक्षिणी राज्य के सिपाही बीमार हो गए।
जी।
और ये भी सुना कि ल्यूबी भाग गया है और उनसे साथ टूट गया है।
जी।
फिर तो जोयू बहुत अकेला पड़ गया होगा। क्या उसने आपको भेजा है?
मैं अपनी मर्जी से आई हूं।
पर आप यहां आई क्यों हैं?
मेहरबानी करके अपने सिपाही वापस बुला लीजिए। जीत आपकी ही है, अब लड़ने की क्या जरूरत?
नहीं, जोयू मेरे आगे आत्मसमर्पण करेगा सिर झुकाकर। हाँ।
ये क्या कर रही हैं आप?
मैं यहाँ अपने पति के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि अपने राज्य के लोगों के लिए आई हूँ। इस युद्ध को खत्म कर दीजिए, इससे कई सारी जानें बच जाएंगी।
अगर मैं इनकार कर दूं तो? अब बस कीजिए। आपको मुझे जोयू को हराते हुए देखना होगा। देखते हैं वक्त किसके साथ है। इस युद्ध के बाद मेरे पास आपकी चाय के लिए काफी वक्त होगा।
एक प्याली तो पी लीजिए, आपको इससे सुकून मिलेगा।
हमारी इज्जत कभी किसी ने नहीं की, तो क्या हुआ? जब तक हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे कोई गम नहीं।
ध्यान से सुनो, बहुत जल्द ही हमारी नाव काऊ-काऊ के जहाजों पर हमला करेगी। उनके जहाज खाक में मिलने तक हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा।
किसी को कोई दिक्कत है?
बिल्कुल नहीं,
मुझे यकीन था।
क्या सबने अपने परिवारों को खतरे दिए?
नहीं, जल्दबाजी नहीं। चाय के रंग और सुगंध पर जरा गौर कीजिए।
ओह,
वो हमला करने में देर क्यों कर रहे हैं? हवा अजीब सा बर्ताव कर रही है।
जानता हूं, लेकिन वो इस वक्त चाय पी रहे हैं।
चाय?
चाय बनाने में सबसे मुश्किल बात क्या है?
चाय का बर्तन, फिर पानी, पत्तियां, उबालने का वक्त, सभी को जानना जरूरी है। सबसे मुश्किल काम है पानी उबालना।
पानी उबालना?
देखो, हवा रुक गई है।
पहले उबाल में बुलबुले नन्ही मछली की आंखों जैसे दिखते हैं, दूसरे उबाल में किनारे एक झरने की तरह उछलते हैं, इसी वक्त चाय के रंग में निखार आ जाता है, तीसरे उबाल में पानी से फटने जैसी आवाजें आती हैं, इससे ज्यादा उबला तो पानी अपना स्वाद खो देता है।
सरकार, हमले का वक्त आ गया है, अब आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं?
अपने साथियों का।
कौन से साथी बताओ? ल्यू भी तो पहले ही भाग चुका है।
ये सब जोयू के मंसूबे का हिस्सा है।
कुछ बातें राज रखी जाएं तो ही बेहतर है।
बस करो, प्याली भर गई।
क्या आपको इस चाय में अपनी आप की झलक नहीं दिख रही? आपके दिल की चाहते भर कर बाहर आ रही हैं। आपके दिल में औरों के लिए रहम की कोई जगह नहीं है। इस भरे हुए दिल को लेकर आप लाल पहाड़ी तक आए हैं। यहाँ कोई आपके दिल को फर्श पर खाली कर देगा। काओ काओ, आप चाय की कला कभी नहीं सीख सकते।
सरकार, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए?
आज रात 2 बजे 10 आग के जहाज काव काव के जहाजों से टकराएंगे और अंदर जाने का रास्ता बनाएंगे। ऐसा होते जावियन उनके पूर्व वाले दरवाजे पर हमला करेंगे, जिससे उनका ध्यान हट जाएगा। महाराज ल्यू बी, ग्यानयू और जेंगजी पश्चिम वाले दरवाजे से जाकर काव काव के ठिकाने पर टूट पड़ेंगे।
जी
क्या हुआ?
जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ।
लेकिन हुजूर,
सर फट रहा है।
वैद्य जी तो जा चुके हैं।
क्या कहा तुमने?
वैद्य जी जा चुके हैं।
काम कर दिया है। आज रात हमारी किस्मत का फैसला हो जाएगा।
कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
गोंग मिंग, आपने बिल्कुल सच कहा था।
सूचना, उनके जहाज तेजी से बढ़ रहे हैं।
फौरन जहाजों को अलग करो।
जी, वो काम शुरू कर चुके हैं।
भाई साहब, बहुत बुरी खबर है। उन्होंने आगे से घेरा तोड़ दिया है।
डर क्यों रहे हो? ये मत भूलो कि तुम एक सेनापति हो।
हाँ, पर
हमारी नौसेना बुरी तरह हार गई। पूर्व दक्षिण और पश्चिम तीनों तरफ के जहाज डूब गए।
मेरे ख्याल से सबको जला दिया गया है।
जी सही कहा, वहां कोई हलचल नहीं हो रही।
आग बहुत ही तेज है, चाहे जो भी हो सब साथ ही रहना, अलग मत होना।
लगता है कि पीछे हट जाने में ही समझदारी है।
पीछे हट जाएं? हमारे सबसे बेहतरीन सिपाहियों के होते हुए भी वो सब मेरे लिए अपनी जान तक दे देंगे। उन्हें खत्म भी होना पड़े तब भी उन्हें लड़ना होगा। ये है सेना की ताकत। सब साथ मिलकर हमला करो। हिम्मत मत हारना।
मैंने हर योद्धा का अंत खुद अपने हाथों से किया। एक को यहां खत्म किया, एक को वहां,
और मरेगा यहां।
सही वक्त पर आया। मैं जानता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे।
मैंने कहा था हम फिर मिलेंगे।
गेंदिंग शहीद हो गए,
उनकी मौत बेकार नहीं जाती।
आखिरी बारी है, सियाकवी को जल्दी ही बचाना होगा।
पहले काव काव को ढूंढो।
हमने अपना सब कुछ खो दिया उस कमीनी औरत की वजह से।
उसी की वजह से हमले का मौका हाथ से निकला। मैं उसे मार डालूंगा।
चलो।
जान प्यारी है तो आगे नहीं आना।
मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा।
गद्दार काव काव।
खामोश। तुम मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री जी कहोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हवा का झोंका मुझे हरा देगा।
क्योंकि तुम कुदरत की मर्जी को समझते ही नहीं।
सपने में भी नहीं सोचा था कि एक प्याली चाय मुझे हरा देगी।
तुम्हारे लिए युद्ध चाय पीने जैसा ही तो था। अफसोस तुम अपनी लड़ाई का मकसद ही नहीं जानते।
मैं यहां शहंशाह के हुक्म से तुम जैसे बागियों को कुचलने के लिए आया हूं।
हम शहंशाह के नहीं, तुम्हारे खिलाफ है।
चुप कर।
बेवकूफ बच्चे, इस शिकार में मुझे काफी अच्छा लगेगा। चलो मारो। मैं शहंशाह के दरबार का प्रधानमंत्री हूं। तुम जैसे बागियों के लिए मौत की सजा भी कम है, लेकिन अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। चलो झुक जाओ सबके सब।
तुम्हारा खेल खत्म।
ऊपर देखो।
कोई, तुम दोनों ठीक तो हो ना?
हम दोनों ठीक हैं।
हमने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया।
चलो हार मान जाओ। हथियार डाल दो, नहीं तो ज़ियाकुई की जान जाएगी।
हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे।
कौन हम? तुम्हारा मतलब ये सब? ये मामूली लोग?
वो मेरे जाबाज दोस्त हैं।
युद्ध में कोई दोस्त नहीं होता। कल ये सब तुम्हारे दुश्मन होंगे। सेनापति, उसे नीचे फेंक दो।
जा मर।
तुम दोनों ठीक हो ना? चलो चले।
जाओ, लौट जाओ।
जहां से तुम आए हो वहीं वापस चले जाओ।
जंग पूरी होती है। अनेकता से आती है एकता और एकता से अनेकता।
हाँ, इस दुनिया में बहुत से बहादुर हैं, पर मैं आपसे लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता।
डर तो मुझे आपसे लड़ने में लगेगा।
मुझसे? अब वक्त हो गया है कि मैं घर लौटकर आराम करूं।
क्या आपने बागवानी की है?
हाँ, एक बार फूल उगाने की कोशिश तो की थी, लेकिन ज्यादा दिन जिए नहीं।
वो बेशक ना जियो, पर हमारी नस्लें जिएंगी।
जी हाँ,
इस युद्ध ने मुझे कई सच्चे दोस्त भी दिए हैं। अब चाहे जो हो जाए, मैं कभी ये बात भूलूंगा नहीं।
मुझे भी ये बात हमेशा याद रहेगी।
कोंगमिंग, जब वो घोड़ी बड़ी हो जाए तो उसे युद्ध में लड़ना मत सिखाना।
ठीक है, याद रखूंगा।
Thank you.